अरमान को बार बार यही लग रहा था कि आस्था घर छोड़कर कहीं चली गई होगी, इसीलिए वो गुस्से से सबको बारी बारी से देख रहा था और बोला, अगर वो लड़की मेरी मर्जी के बगैर इस घर से बाहर निकल गई होगी तो तुम सबका इस दुनिया में आज आखिरी दिन होगा। याद रखना, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर वो गुस्से से बारी बारी से हर एक गार्ड को घूरने लगा। अरमान सिंघानिया की आंखों में आग देखकर सभी गार्ड थर थर कांप रहे थे। वहीं देव, ध्रुव, आहान हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक आस्था कहाँ जा सकती है और अरमान आस्था को ढूंढने के लिए इतना बेचैन क्यों है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी घूम रहा था कि कहीं अरमान भाई ने आस्था भाभी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है, या उन्हें डांटा धमकाया फिर से उन पर हाथ तो नहीं उठाया। कहीं ना कहीं ये सवाल उनके दिमाग में आ रहा था, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अरमान से कुछ भी सवाल कर सके। वेल, अब अरमान ने गार्ड्स की ओर देखते हुए बोला, यहां खड़े खड़े रहकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर लेके आओ उस लड़की को मेरी आंखों के सामने। सभी गार्ड्स पर उसकी आग उगलती नजरों को देखकर फटाफट से अपने काम पर जाने लगे, लेकिन तभी उन्हें दादाजी की आवाज सुनाई दी। यहां क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं दादाजी ने अरमान की लास्ट वार्निंग जो वो गार्ड्स को दे रहा था सुन ली थी, और दादाजी का मन आशंकाओं से भर गया था और वो घूरते हुए सबसे बोले, यहां हो क्या रहा है? किसे ढूंढ कर लाने की बात हो रही है? अब दादाजी आ गए थे तो अरमान जो अपने कमरे में जा रहा था उस वक्त वो हाल में एक तरफ खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई इमोशन नहीं था। बिल्कुल सपाट चेहरा लिए वो वहां खड़ा हुआ था। तब दादाजी थोड़ी सी तेज आवाज में ध्रुव और आहन की ओर देखकर बेरुखी से बोले, क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया? मैंने क्या पूछा है? तुम लोगों से किसको ढूंढने की बात हो रही है? क्या हो रहा है? और रश्मि और आस्था कहाँ है? तब तक दादाजी की तेज आवाज सुनकर रश्मि, जो उस वक्त अपने कमरे में सो रही थी, वो भी नींद से जाग गई थी, क्योंकि दादाजी की आवाज काफी तेज थी, क्योंकि उन्हें किसी न किसी अनहोनी का डर सताने लगा था। वहीं आकाश, रश्मि दोनों एक साथ अपने कमरे से बाहर निकले थे और दादाजी की आवाज सुनकर वे दोनों भी हाल में जमा हो चुके थे। सुमित, जो कि अपने एक पास्ट से जूझते हुए खुद को कमरे में कैद कर लिया था, अब दादाजी की इस तरह से आवाज आने के बाद वो भी फटाफट से आकर हाल में खड़ा हो गया था और बारी बारी से सबकी ओर कन्फ्यूशन से देखने लगा था। तब आकाश, सुमित ने भी एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ बोले, क्या हुआ है दादाजी? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? दादाजी उस वक्त काफी गुस्से में थे। उनकी आवाज पूरे सिंघानिया मेंशन में गूंज रही थी। तभी ध्रुव, आहान और देव भी दादाजी के नजदीक आकर खड़े हो गए थे, लेकिन अरमान अभी भी सीढ़ियों के पास ही खड़ा था, जो कि अपने कमरे में जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि दादाजी ने उसे रोक लिया था तो उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ा था। तभी दादाजी कड़क आवाज से बोले, क्या तुम में से किसी को मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं? मैं तुम लोगों से ये जानना चाहता हूं कि अभी किस लड़की की बात हो रही थी, और रश्मि यहां है तो आस्था कहां है? अब आहान और ध्रुव एक दूसरे की ओर हिचकिचाते हुए देखने लगे, आंखों ही आंखों में एक दूसरे से पूछ रहे थे कि अब दादाजी को क्या जवाब दें। तब दादाजी सीधा अरमान के सामने जाकर खड़े हो गए थे और उसकी ओर देखते हुए एकदम कड़क आवाज में बोले, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैं जानना चाहता हूं यहां किस लड़की की बात कर रहे थे तुम, और आस्था कहां है? अब जैसे ही दादाजी ने दांत पीसते हुए ये कहा, अरमान ने एकदम सपाट चेहरे के साथ जवाब दिया, मुझे नहीं पता वो कहां है। वो लड़की शायद घर छोड़कर चली गई है। मुझे पूरी उम्मीद है, जरूर वो घर का सारा रुपया पैसा नकदी जेवर लेकर चली गई होगी। आपने उस दो कौड़ी की लड़की को इतनी छूट दे दी थी कि वो लड़की हम सबको चूना लगाकर चली गई। अब जैसे ही अरमान ने डेंजरस वॉइस में ये कहा, दादाजी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं और बाकी सबका चेहरा भी पूरी तरह से उतर गया था। वे सब सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि अरमान सिंघानिया आस्था के लिए ऐसी सोच रखता होगा। जो लड़की मंदिर में चढ़ाने के लिए नारियल के पैसे भी अरमान से उधार में मांग रही थी ताकि वो बाद में अरमान को उसका पूरा पैसा लौटा दे, वो भला इस घर में चोरी कैसे कर सकती है? किसी को कुछ समझ नहीं आया था कि अचानक से अरमान ने क्या बोला था। अरमान को एक पल तो ये लगा था कि शायद उसने आस्था के साथ बाथरूम में कुछ ज्यादा ही वाइल्ड बिहेव किया था, इस वजह से आस्था घर छोड़कर चली गई। लेकिन अगले ही पल, जो कि उसे आस्था को लेकर शक था कि हो सकता है कि वो पैसे वगैरह लेकर इस घर से चली गई हो, इसीलिए अरमान ने तेज आवाज में बोला, राजेश यहां आओ। राजेश, जो कि अरमान के घर का एक पुराना नौकर था, अरमान ने उसकी ओर देखकर बोला, जाओ, जाकर सभी कमरों की तिजोरियां चेक करो और देखकर आओ कि कहां से क्या कीमती सामान मिसिंग है। सभी लोग अरमान के इस तरह के बिहेवियर से पूरी हद तक परेशान हो गए थे। इसका मतलब साफ था कि अरमान सिंघानिया ने अपनी बीवी को एक नौकर तक की जगह दी थी, इसीलिए तो एक नौकर को जाकर चेक करने के लिए कह रहा था कि घर का सामान अपनी जगह पर है या नहीं है, उसकी तहकीकात करो। अब दादाजी के सब्र का बांध टूट गया था और अचानक उन्होंने खींचकर एक तमाचा अरमान के मुंह पर दे मारा था। अरमान का चेहरा एक तरफ झुक गया था। अब दादाजी ने जैसे ही अरमान पर इस तरह से हाथ उठाया, सभी लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। वहीं रश्मि के तो आंखों में आंसू आ गए थे। तभी दादाजी अपना कंट्रोल खो बैठे थे।
उन्होंने तुरंत अपने दोनों हाथों से अरमान का गिरेबान पकड़ लिया और बड़ी ही डेंजरस वॉइस में उसकी ओर देखकर बोले, क्या बकवास की तूने? तो इस वक्त इस घर की बहू के बारे में बात कर रहा है? तुझे क्या लगता है वो मासूम सी बच्ची जिसके दिल में तूने अपने लिए नफरत और डर पैदा कर दिया है, वो इस तरह से मेंशन का सामान चोरी करके गई है? हाँ, और अगर तू उसके साथ प्यार से रहता तो शायद तेरी जिंदगी पूरी तरह से सुधर चुकी होती और शायद तेरी जिंदगी के सारे दुख दर्द दूर हो चुके होते। लेकिन तूने तो उस बच्ची के साथ थानेदार से भी ज्यादा बुरा सलूक किया। तूने उस बच्ची को डराया, धमकाया, उसे मारा पीटा। अरे, तेरे पास तक जाने से डरती थी वो। लेकिन तुझे चोट लगी, फिर भी मैंने उससे रिक्वेस्ट की एक बार वो तेरा ख्याल रखे। हो सकता है कि तेरे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाए। लेकिन नहीं, गलती की मैंने उस बच्ची से रिक्वेस्ट करके। तू अपनी जायदाद और पैसों की बात कर रहा है? हाँ। अरे, उस बच्ची का सिर्फ एक ही लौता सपना है, डॉक्टर बनने का। मैंने तेरी देखभाल करने के लिए उस बच्ची को सिर्फ इतना ही बोला था कि मैं उसका एडमिशन बड़े से बड़े कॉलेज में करवा दूंगा। लेकिन उस स्वाभिमानी लड़की ने साफ साफ इनकार कर दिया। पता है उस बच्ची ने क्या जवाब दिया? कि वो किसी की सेवा के बदले कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करती है जिसके बदले में उसे सेवा का फल मिले। हाँ, और तू आज उस बच्ची के किरदार पर उंगली उठा रहा है और उसे चोर समझ रहा है। अपने इस दिल में क्या छुपा के रखा है तूने? लोगों पर शक करते करते तू इतना शक्की हो गया कि तुझे उस बच्ची की मासूमियत दिखाई नहीं दी जो तू उस पर शक कर बैठा। मैं जानता हूँ जिंदगी ने तुझे जख्म दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने शक के चलते किसी की जिंदगी को जख्मों से भर दे। अरमान दादाजी की बात सुनकर केवल सपाट चेहरा लिए उनकी ओर देख रहा था। हालांकि उसके दिल के अंदर कितनी उथल पथल मची हुई थी इसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था।
तभी दादाजी ने अरमान की ओर उंगली पॉइंट करते हुए बोले, एक और बात मेरी कान खोलकर सुन लेना अरमान सिंघानिया, अगर उस बच्ची को आज कुछ हुआ, उसका बाल भी बांका हुआ, तो याद रखना आज के बाद तेरे लिए तेरा दादा भी हमेशा हमेशा के लिए मर चुका होगा, फिर हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा, समझे तुम? ऐसा बोलकर दादाजी गुस्से से बारी बारी से सबकी ओर देखते हुए वहां से निकल गए थे। अब दादाजी के इस तरह से बोलने पर सभी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, क्योंकि दादाजी ने आज बहुत बड़ी बात बोली थी। वहीं अरमान दादाजी की बात सुनकर पूरी तरह से सुन हो चुका था। उसके हाथ पैर बर्फ के जैसे जम गए थे। तभी अचानक खुद को संभालते हुए अरमान ने अपना ब्लैक शेड्स हाथ में लिया था और जल्दी ही ब्लैक शेड्स अपनी आंखों पर चढ़ा लिया था। तभी राजेश, जो कि अरमान का सर्वेंट था, वो वहां आया और बोला, बॉस, हमने पूरा घर अच्छी तरह से देख लिया है, घर का कोई भी सामान मिसिंग नहीं है और सब कुछ अपनी जगह पर सेफ है। अब राजेश ने जैसे ही ये कहा, अरमान एक तेज आवाज से बोला, ध्रुव, आहन, गाड़ी निकालो, और जल्दी ही वो बाहर की ओर चल दिया था। अब रश्मि, जो कि ये सब कुछ देखने के बाद काफी ज्यादा डर गई थी और दादाजी का गुस्सा शायद उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था, क्योंकि दादाजी ने तो उसे हमेशा बड़े ही सॉफ्ट वॉइस में बात किया करते थे, बड़ा ही प्यार जताया करते थे, लेकिन आज दादाजी का रौद्र रूप देखने के बाद रश्मि काफी हद तक घबरा गई थी और अब वो आस्था के ठीक होने की प्रार्थना करने लगी थी कि आस्था जहां भी हो बस बिल्कुल ठीक हो। वहीं गार्डन के पूल साइड पर अपनी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव को और अपनी जिंदगी के दुख और गमों को सोचते सोचते आस्था, जो कि पहले से ही काफी वीक थी क्योंकि वो अभी भी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुई थी, वो अब एक बार फिर पूल साइड पर ही बेहोश हो चुकी थी। हालांकि आस्था का इरादा थोड़ी देर पूल साइड पर बैठने के बाद वापस से सिंघानिया मेंशन के अंदर जाने का था, ताकि वो रश्मि के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि रश्मि की कंपनी उसे काफी ज्यादा पसंद आया करती थी। लेकिन इससे पहले कि वो उठकर चलती, उसका सर जोरों से चकराया और वो वहीं पूल साइड के ठीक किनारे पर बेहोश हो गई थी। वहीं अरमान सिंघानिया ने अपने डेविल रूप में आते हुए जल्दी ही अपने फार्म हाउस के सारे सिक्योरिटी को पूरे शहर भर में फैलने के लिए कह दिया था और जितने भी बस स्टेशन, गली, नुक्कड़, रेलवे स्टेशन, जितने भी शहर से बाहर जाने वाले रास्ते, शहर के भर के रास्ते, हर एक रास्ते पर नाकाबंदी कर दिया गया था। इतना ही नहीं, हर जगह आस्था को खोजा जाने लगा था। लेकिन अरमान सिंघानिया ने एक बार भी अपने घर के ही पूल साइड पर जाकर देखने की नहीं सोची थी कि आस्था कहीं और नहीं बल्कि पूल साइड पर भी हो सकती है। वेल, जल्दी ही अरमान सिंघानिया के आदमी ने केवल कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर पूरे के पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया था। इतना ही नहीं, हर एक गैंग से पूछताछ की जा रही थी, हर एक क्रिमिनल इस वक्त अरमान के आदमियों की कस्टडी में था और खुद भी अरमान अपने ग्रुप समेत गाड़ी लेकर आस्था को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। वहीं दूसरी ओर वीर रायचंद अब खतरे से बाहर था, साथ ही साथ उसे इस बात के बारे में भी पता चल चुका था कि उसकी माँ वसुंधरा रायचंद ने डेविड को अरमान की मौत के लिए भारी भरकम रकम दी है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अरमान की मौत ही चाहता था। लेकिन अरमान की सिक्योरिटी इस देश की सबसे बेस्ट और बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी थी, जिसकी वजह से आज तक कोई भी अरमान को छू तक नहीं पाया था। लेकिन वीर को इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि जिस अरमान सिंघानिया को वो मरवाना चाहता है असल में वही डेविल किंग है, जिसके नाम से अंडरवर्ल्ड की दुनिया तो क्या हर कोई कांपता था। वो वसुंधरा जी जल्दी ही अपने बेटे के लिए अपने हाथों से थोड़ी सी कम स्पाइसी खिचड़ी बनाकर ले आई थी ताकि वो उसे खिला सके, क्योंकि अभी तक उसका गला पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। अरमान के जोरों से गला दबाने के कारण उसके गले की काफी ज्यादा हड्डियां फ्रैक्चर हुई थी, जिसकी वजह से वो सही तरह से कोई खाना वगैरह नहीं खा पा रहा था।
कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने उसे बोलने से भी मना किया था, लेकिन वीर रायचंद उस वक्त गुस्से से भरा बैठा था। वो उस वक्त चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, कुछ लोगों की जान लेकर अपना गुस्सा शांत करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसकी फीलिंग अच्छी तरह से समझ चुकी थी। इसीलिए उन्होंने वीर को होश में आते ही बता दिया था कि उसने डेविड को अच्छी खासी मोटी रकम देने के बाद अरमान सिंघानिया के नाम की सुपारी दे दी है। तब वीर रायचंद मुस्कुराने लगा और अपनी माँ का बनाया हुआ उबला खाना, जो कि बिना नमक मिर्च के था, मुस्कुराते हुए खाने पीने लगा था और मन में सोच रहा था, बस एक बार मैं ठीक हो जाऊँ, तेरी मौत के बाद मैं तेरी बीवी को हमेशा के लिए अपनी रखेल बनाकर रखूंगा। वीर इस वक्त काफी ज्यादा बुरी हालत में था, लेकिन फिर भी अपनी आदतों से वो बाज नहीं आ रहा था। वेल, तभी वसुंधरा जी ने रंजीत को फोन किया था और बोला कि डेविड ने अपना काम किस दिन करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि डेविड इस वक्त पेरिस में घूमने फिरने के लिए गया हुआ था। डेविड घूमने फिरने नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करने गया हुआ था। डेविड की एक गर्लफ्रेंड थी जिसे वो बेहद प्यार किया करता था और पूरी दुनिया उसके साथ घूमने का सपना देखा करता था, और इसीलिए आज अपनी गर्लफ्रेंड की इच्छा को पूरी करने के लिए डेविड उसे पेरिस में लेकर गया हुआ था।